حسین بادشاہ حسین شہنشاہ حسین بادشاہ حسین شہنشاہ
الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا وشفينا وشفاء صدورنا وغوثنا وغياثنا ومغيثنا ومعيننا وقطبنا وفريدنا ونظامنا وسراجنا وأولانا وأشرفنا ونور عيننا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت وَيُطَاهِرَكُمْ تَطْهِيرًا صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسوله النبی الکریم ونحن على ذلك لمن الشاهدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین بارگاہ رسالت میں درود پاک نذرانہ پیش کریں اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وأصحاب سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا رسول الله جیسا کہ ہم نے کل آپ حضرات کو بتایا تھا کہ آج انشاءاللہ تعالی اہل بیت کا ذکر شروع ہوگا اور ان کے فضائل مناقب بیان کیے جائیں گے اور اس کے ساتھ ہی خاتون جنت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کا ذکر مبارک بھی کیا جائے گا۔ وما توفیقی الا باللہ العلی العظیم۔ آیت مبارکہ جو آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی، پہلے اس کا ترجمہ، ارشاد ربانی ہوا انما یرید اللہ، بے شک اللہ یہی چاہتا ہے، لیذہب عنکم الرجس اہل البیت، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر والوں، تم سے ہر قسم کی ناپاکی کو دور کر دے، وَيُطَاهِرَكُمْ تَطْحِیرًا، اور تمہیں پاک کر کے خوب سترا کر دے۔ یہ اس آیت مبارکہ کا ترجمہ ہے۔ سورہ احزاب کی یہ آیت ہے اور مفسرین کرام نے فرمایا کہ یہ آیت حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت کی شان میں نازل ہوئی۔ پہلے یہ سمجھیں کہ اہل بیت کون ہیں۔ بعض حضرات یہ کہتے ہیں کہ حضرت علی، حضرت فاطمہ، امام حسن، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین، صرف یہ اہل بیت ہیں، ان کے علاوہ وہ کسی کو اہل بیت میں داخل نہیں کرتا۔ اور ایک طبقہ وہ ہے، وہ کہتے ہیں امہات المومنین، یہ اہل بیت، اور ان کے علاوہ کسی کو داخل نہیں کرتا۔ جبکہ ہم اہل سنت و جماعت کا عقیدہ یہ ہے کہ جتنی امہات المومنین ہیں سب اہل بیت ہیں، حضرت علی، حضرت فاطمہ، امام حسن، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین، یہ سب اہل بیت میں شامل ہیں۔ دیکھیے، انسان اپنی بیوی کو کہتا ہے یہ میری گھر والی، بیٹی کو تو نہیں کہتا نا، اس لیے کہ بیٹی کا گھر الگ ہے، بیوی جو ہے وہ گھر والی ہوتی ہے، وہی اہل بیت۔ اب وہ اعتراض کرتے ہیں کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی چادر مبارک ان پر ڈالی، کن پر؟ حضرت علی، حضرت فاطمہ، امام حسن، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین، اور سرکار نے فرمایا اللہم ہؤلاء اہل بیتی ویطہرہم تطہیرا، اے اللہ یہ میرے اہل بیت ہیں تو ان کو پاک کر دے جیسا کہ پاک کرنے کا حق ہے۔ کہتے ہیں اہل بیت یہی ہیں بس، سرکار نے ان کو فرمایا یا اللہ یہ میرے اہل بیت، امہات المومنین کو تو نہیں فرمایا، نہ ان پر چادر ڈال۔ ہم نے کہا سنو، امہات المومنین کے لیے اسی لیے نہیں فرمایا یہ اہل بیت ہیں کہ سب کو پہلے ہی پتا تھا یہی حضور کی گھر والی، بیوی تو گھر والی ہوتی ہے، اہل بیت تو وہی، داماد اہل بیت میں شامل نہیں ہوتا، بیٹی اہل بیت میں شامل نہیں ہوتی، اس کا گھر الگ ہوتا۔ تو سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت علی، حضرت فاطمہ، امام حسن، امام حسین ان پر اپنی چادر مبارک ڈالی، اور جب دعا کی اللہم ہؤلاء اہل بیتی ویطہرہم تطہیرا، اے اللہ یہ میرے اہل بیت ہیں انہیں پاک کر دے جیسا کہ پاک کرنے کا حق ہے۔ وجہ یہ تھی، سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام یہ بتانا چاہتے تھے یہ بھی میرے اہل بیت ہیں، کوئی ان کو اہل بیت سے خارج نہ سمجھے، یہ اس میں داخل ہے، یہ اہل بیت میں داخل ہے۔ تب ہمارا عقیدہ کیا ہوا اہل سنت کا؟ تمام ازواج مطہرات اہل بیت ہیں، حضرت علی، حضرت فاطمہ، امام حسن، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین اہل بیت ہیں۔ اور علماء نے لکھا کہ حضرت عباس، حضرت حمزہ، حضرت جعفر یہ بھی اہل بیت ہیں۔ تب آپ نے سمجھ لیا کہ اہل بیت کون ہیں۔ اب آئیے ان کی فضیلت۔ فرمایا اللہ ارادہ رکھتا ہے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر والوں کہ تم سے ہر ناپاکی کو دور کر دے، وَيُطَحِرَكُمْ تَطْحِیرًا، اور تمہیں پاک کر کے خوب سترا کر دے۔ اللہ نے ان کی پاکی کا ارادہ کیا اور ان کو پاک کر دیا۔ جتنے اہل بیت ہیں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے، وہ اس آیت کے مصداق ہیں۔ تو اللہ نے ان کی پاکی کا ذکر اپنے کلام مقدس میں فرمایا، اسی لیے شاعر نے لکھا ان کی پاکی کا خدائے پاک کرتا ہے بیان، ان کی پاکی کا خدائے پاک کرتا ہے بیان، آئے تطہیر سے ظاہر ہے شان اہل بیت، آئے تطہیر سے ظاہر ہے شان اہل بیت۔ ان کی عظمت، ان کی رفعت، ان کی بلندی، ان کی پاکی اس آیت مبارکہ سے ظاہر ہے۔ اہل بیت کی شان میں اور بھی آیتیں نازل ہوں۔ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا واعتصموا بحبل اللہ جميعا ولا تفرقوا، تم سب مل کر اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو اور آپس میں تفرقہ نہ ڈالو۔ حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ اس آیت کے تحت فرماتے ہیں نحنو حبل اللہ اللہ کی رسی وہ ہم اہل بیت الذی قال اللہ فی یعنی جس کا ذکر اللہ نے کیا ہے وہ ہم اہل بیت ہمارے دامن کو پکڑو اور آپس میں تفرقہ نہ ڈال. دوسری آیت بلکہ یہ تیسری آیت اللہ رب العالمین فرماتا ہے فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ پوچھو اہل ذکر سے اگر تم نہیں جانتے. پوچھو اہل ذکر سے حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم نے فرمایا اہل ذکر ہم ہیں. اللہ نے فرمایا نا پوچھو اہل ذکر سے, حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم فرماتے ہیں ہم اہل ذکر ہیں, ہم سے پوچھو. اور حقیقت یہی ہے, یہ وہ نفوس قدسیہ تھے جن کے سامنے قرآن نازل ہوتا تھا, حضرت جبریل وحی لے کر آتے تھے. کون سی آیت کس معاملے میں نازل ہوئی, کس وقت نازل ہوئی, کس لیے نازل ہوئی, یہ سب جانتے تھے. اسی لیے حضرت علی نے فرمایا ہم اہل ذکر ہیں, ہم سے پوچھو. یہ آیت بھی اہل بیت کی شان میں نازل ہوئی. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے متعدد مواقع پر اہل بیت کی فضیلت بیان فرمائی. سرکار نے فرمایا مثل اہل بیتی کمثل سفینۃ نوح, میرے اہل بیت کی مثال حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی کی طرح. ومن رکب فیہا نجا, جو اس میں سوار ہو گیا وہ نجات پا گیا. ومن تخلف عنہا غرق, اور جو اس میں نہیں بیٹھا غرق ہو گیا. کیوں مثال دی؟ آپ نے سنا ہوگا علماء کرام سے کہ حضرت نوح علیہ السلام نے ایک بڑی وسیع اور بہت بڑی کشتی بنائی. جیسی کشتی آج کل چلتی ایسی نہیں ہے, بہت لمبی, بہت چوڑی, بہت عظیم. اللہ نے فرمایا نوح کشتی بناؤ, بنانے لگے. ان کے قوم کے لوگ ہنستے, آپ کیا کر رہے ہیں, یہ اتنی بڑی کشتی یہ چلے گی کہاں, یہ کون سے سمندر میں چلے گی, کون سے پانی میں چلے گی, اتنی بڑی کشتی. بناتے رہے خاموشی سے, فرمایا طوفان آنے والا. انہوں نے مذاق سمجھا. جب وہ کشتی بن کر تیار ہو گئی, اللہ فرماتا ہے اے نوح ہر جاندار کا ایک جوڑا اس میں رکھ لو. ہر جاندار, انسان, حیوان, چرند, پرند, جتنے بھی ہیں سب کا ایک جوڑا اس میں رکھ لو. کیوں, ان کی نسل باقی رکھنی تھی نا. اور طوفان نوح جب آنا تھا تو ہر چیز کو غرق ہونا تھا, تو اللہ تبارک و تعالی نے پہلے سے انتظام فرما دیا نسل کو باقی رکھنے کا, انسانوں کی بھی, حیوانوں کی بھی, چرند پرند سب. آپ نے ایک جوڑا رکھ لیا. پھر جب طوفان آیا, پانی آیا, پوری کائنات میں پانی پانی, وہ کشتی جو تھی وہ چلنا شروع ہو. جو کشتی میں تھا وہی باقی رہا اور جو باہر تھا غرق ہو. کیسے باقی رہے؟ بڑی بڑی بلڈنگیں, پہاڑ, سب اس کے اندر غرق. تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے اہل بیت کی مثال حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی کی دی. فرمایا مثل اہل بیتی کمثل سفینۃ نوح, میرے اہل بیت کی مثال حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی کی طرح ہے. ومن رکب فیہا نجا, جو اس میں سوار ہو گیا وہ نجات پا گیا. ومن تخلف عنہا غرق, اور جو اس سے باہر رہا غرق ہو گیا. اب بات سمجھ میں آئی؟ اچھا, اب آپ دیکھیں اہل بیت کو بنایا نجات کی کشتی. کیا بنایا؟ نجات کی کشتی. اور صحابہ کے لیے کیا فرمایا؟ اصحابی کالنجوم فبأيهم اقتديتم اهتديتم, میرے صحابہ آسمان ہدایت کے ستارے ہیں, جس کے پیچھے چلو گے, جس کی اتباع کرو گے ہدایت پا جاؤ. کسی ایک کے لیے نہیں فرمایا, کل صحابہ اس میں شامل ہیں. جب سرکار نے دنیا سے پردہ فرمایا 124,000 सहाबा मौजूद थे, 124,000। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की यह हदीस, यह हुक्म उन सब पर लागू होता। अस्हाबिकन नुजूम, मेरे साहब आसमान हिदायत के सितारे, जिसके पीछे चलोगे हिदायत पा जाओगे। अच्छा, अब मसला क्या है? अहले बैत को बनाया निजात की कश्ती और सहाबा को बनाया हिदायत का सितारा, यही बात है ना। अब याद रखिएगा, मैं आगे चल के पूछ लूंगा ताकि पता चल जाए आप सुन भी रहे हैं या वैसे ही बैठे। अहले बैत क्या है? निजात की कश्ती और सहाबा हिदायत के सितारे, ठीक है ना। सहाबा हिदायत के सितारे हो, अहले बैत निजात की कश्ती। क्यों? मिसाल क्यों दी? मिसाल इसलिए दी, आज से 1400 या 1500 साल पहले जब बहरी सफर होते थे और खुसूसन रात में, तो कोई रिडार तो था नहीं कि जिसको देखकर सिम का तायुन हो। अब आजकल आप देखिए ना, पानी का जहाज है उसमें रिडार मौजूद है, उसमें आलात साइंसी लगे हुए हैं, जो कैप्टन है आप उसे मल्लाह कहें या कप्तान कहें, उसने उसमें फीड कर दिया, आराम से बैठे हुए वो जहाज चले जाए। इसी तरह हवाई जहाज कॉकपिट में कभी आपका जाने का इत्तेफाक हुआ हो, मैं एक दफा गया था, एक जानने वाला मिल गया था, वो ले गया था। हजारों किस्म की लाइटें, हजारों किस्म के बटन सारे लगे हुए। एक मर्तबा जहाज को उड़ाया और उसको उसमें फीड कर दिया, किधर जाना है, कौन सी सिम जाना, उसी में आलात लगे हैं, उसने उसी में बटन दबाए सेट कर दिया। अब ये नहीं कि वो स्टीयरिंग पकड़े खड़ा है जैसे हम गाड़ी चलाते हैं कि जरा सा मसला हुआ तो पता चला इधर देखा आपने आगे मार दिया, ऐसा नहीं है। उसने फीड कर दिया, बैठा हुआ चाय पी रहा है, आपस में बातें कर रहे हैं। दो पायलट होते हैं, एक बैठा रहता है, दूसरा वॉशरूम भी होकर आ गया, आपस में गुफ्तगु भी हो रही है, जहाज अपनी सम पर चला जा रहा है। हां, जब लैंडिंग होगी तब फिर संभालना है। अब ऐसा नहीं खुद ब खुद ही उतर जाए, अब इतनी तरक्की भी नहीं की, हो सकता है आगे जाके हो जाए लेकिन आजकल नहीं है। खैर बहरहाल, तो 1400 साल पहले जो कश्तियां चलती थी, जो जहाज चलते थे, वो रात में सितारों को देखकर अपनी समत का तायुन करते थे, सितारों को देखकर सिम का तायुन करते। इसीलिए मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह मिसाल दी, मेरे अहले बैत निजात की कश्ती हैं, मेरे सहाबा हिदायत के सितारे हैं, बैठो यहां और देखो वहां, बैठो यहां और देखो वहां, यानी एक हाथ में अहले बैत का दामन हो तो दूसरे हाथ में सहाबा। कुछ लोग हैं ना जो सहाबा को बुरा कहते हैं, सिर्फ अहले बैत को मानते हैं, कुछ हैं जो सिर्फ सहाबा को मानते हैं और किसी को नहीं मानते। अल्हम्दुलिल्लाह, हम अहले सुन्नत व जमात सहाबा को भी मानते हैं, अहले बैत को भी मानते हैं, और जिसको मानते हैं उसके फजाइल के मुताबिक मानते हैं, जैसा रसूल की जबान से सुना वैसा ही मानते हैं, ना बढ़ाते हैं ना माजल्ला घटाते, सही है ना। अच्छा, अब अहले बैत निजात की कश्ती, सहाबा हिदायत के सितारे, तो अगर ये तरतीब उलट दी जाए तो क्या होगा? ये भी तो हो सकता था ना कि नबी पाक अलैहिस्सलाम फरमाते मेरे सहाबा निजात की कश्ती, सहाबा जो है ना ये निजात की कश्ती, और अहले बैत ये आसमान हिदायत के सितारे, ऐसा हो सकता था क्या? नहीं, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? अहले बैत को निजात की कश्ती क्यों बनाया? सरकार फरमाते थे मेरे अहले बैत हिदायत के सितारे हैं और सहाबा निजात की कश्ती। अब सुनो, नबी पाक अलैहिस्सलाम के हर इरशाद में, हर अमल में हिकमत है, मसलहत है।
اہل بیت کو بنایا نجات کی کشتی، صحابہ کو بنایا ہدایت کا ستارہ۔ اگر صحابہ کو نجات کی کشتی بنا دیتے تو رسول جانتے تھے، اگر میں نے اپنے صحابہ کو نجات کی کشتی بنا دیا تو ایک وقت آئے گا کہ دنیا میرے صحابہ سے خالی ہو جائے گی۔ وقت تو آنا تھا نا بھائی، صحابی وہ ہے نا جس نے ایمان کی حالت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار کیا اور ایمان پر خاتمہ ہوا، وہ صحابی، صحیح ہے نا۔ لیکن وہ کب تک؟ 20 سال، 50 سال، 60 سال، 80 سال، 90 سال، 100 سال، پھر جانا تو تھا نا، ایک وقت آنا تھا کہ دنیا صحابہ سے خالی ہونی تھی۔ میرے رسول جانتے تھے اگر میں نے صحابہ کو نجات کی کشتی بنا دیا تو ایک وقت آئے گا کہ دنیا میرے صحابہ سے خالی ہو جائے گی، پھر میری امت کس کشتی میں بیٹھ کر نجات حاصل کرے گی؟ میری امت کس کشتی سے کے ذریعے نجات حاصل کرے گی؟ اور رسول یہ بھی جانتے تھے کہ وقت آئے گا کہ دنیا صحابہ سے تو خالی ہوگی لیکن میری آل قیامت تک باقی رہے گی، میرے اہل بیت قیامت تک باقی رہیں گے، اسی لیے میں اس کو بناؤں جو قیامت تک باقی رہے۔ اہل بیت نجات کی کشتی ہیں، صحابہ ہدایت کے ستارے۔ اسی لیے شاعر نے لکھا، اہل سنت کا ہے بیڑا پار اصحاب حضور، اہل سنت کا ہے بیڑا پار اصحاب حضور، نجم ہے اور ناؤ ہے عطرت رسول اللہ کی، نجم ہے اور ناؤ ہے عطرت رسول اللہ کی۔ اہل سنت کا تو بیڑا پار ہے، کیوں؟ بیٹھو یہاں دیکھو وہاں، ایک ہاتھ میں الحمدللہ ہمارے اہل بیت کا دامن ہے اور دوسرے ہاتھ میں صحابہ کا۔ ان کو بھی مانتے ہیں، ان کو بھی مانتے ہیں، یہاں بھی کامیاب، وہاں بھی کامیاب۔ اچھا مثال بڑی زبردست ہے، کسی ایک کو چھوڑ نہیں سکتے، کیوں؟ وجہ کیا ہے؟ اب آپ دیکھیں، بحری سفر ہوتے ہیں نا، جہاز میں بیٹھتے تھے اور ستاروں کو دیکھ کر ہدایت حاصل کرتے تھے، رہنمائی حاصل کرتے تھے، تب منزل پر پہنچتے تھے۔ اگر کشتی میں بیٹھ جائیں اور ستاروں کو نہ دیکھیں تو کیا منزل پر پہنچیں گے؟ نہیں پہنچیں گے، وہ تو سم کا تعین کرنا ہے، جانا ادھر ہے، پہنچ گئے ادھر۔ اگر کشتی میں بیٹھے اور ستاروں سے نظر ہٹا لی، منزل پر نہیں پہنچو گے، اور اگر ستاروں پر نظر رکھی کشتی میں بیٹھے ہی نہیں، کھڑے رہے ساحل پر، تب بھی منزل پر نہیں پہنچو گے۔ منزل پر پہنچنے کے لیے لازم ہے کشتی میں بھی بیٹھو، ستاروں کو بھی دیکھو۔ بات سمجھ میں آئی؟ کشتی میں بھی بیٹھو، ستاروں کو بھی دیکھو، اہل بیت کا دامن بھی پکڑو، صحابہ کا بھی پکڑو، یہاں بھی کامیاب، وہاں بھی کامیاب۔ اب بات سمجھ میں آ گئی؟ تو اہل بیت کی محبت ہر مسلمان پر واجب ہے، لازم ہے، ضروری ہے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی تبلیغ جو ہدایت ہمیں پہنچائی، وہ جو سیدھا راستہ دکھایا، وہ ہر چیز کے بدلے فرمایا، میں کچھ نہیں چاہتا سوائے اپنے قرابت داروں کی محبت۔ جو میرے قریبی ہیں ان سے تم محبت کرو، بس یہی میرا صلہ ہے جو میں نے تمہیں تبلیغ کی ہے اور ہدایت پہنچائی ہے۔ یہ اہل بیت کی فضیلت ہم نے بیان کی، اور ایک حدیث میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا حجت الوداع کے موقع پر، میں اپنے پیچھے دو وزنی چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، ترکت فیکم الثقلین، میں تم میں دو بھاری چیزیں، وزنی چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، ایک کتاب اللہ ہے اور ایک میرے اہل بیت، دونوں کو مضبوطی سے تھام لو، کامیاب ہو جاؤ۔ अच्छा वजनी चीज फरमाया, कीमती नहीं फरमाया। ये भी फरमा सकते थे ना, मैं अपने पीछे कीमती चीज या दो कीमती चीज छोड़े जा रहा हूं। नहीं, वजनी वजनी चीजें छोड़े जा रहा हूं दो। क्यों? इसलिए कि हर कीमती चीज वजनी नहीं होती, हर कीमती चीज वजनी नहीं होती। डॉलर आप लें अपने हाथ में, कीमती है ना, $10, $20, $50,000 फूक मारे उड़ जाए, उड़ जाएगा ना कागज। कीमती है, वजनी नहीं। इसलिए ये नहीं फरमाया मैं अपने पीछे कीमती चीज छोड़े जा रहा हूं, वजनी चीजें, दो वजनी चीजें छोड़े जा रहा हूं। सरकार ये बताना चाहते हैं मैं अपने पीछे जिसे छोड़े जा रहा हूं, अरे इतना वजनी हो कि जब कर्बला में डट जाए, खड़ा हो जाए, कैसी ही आंधी चले उसे हिला ना सके।
या रसूल अल्लाह, या अली।
इसलिए फरमाया तरक तो फी कुमुस्सकलैन, मैं अपने पीछे दो वजनी चीजें छोड़े जा रहा हूं, एक किताबुल्लाह, दूसरी मेरे अहले बैत। अब आइए जिक्र करते हैं खातून जन्नत सैयदा तैयबा ताहिरा आबिदा जाहिदा, जितने अलकाबाद में उनके लिए कहें कम, उनका मकाम तो बहुत बुलंद। हम जो कुछ बयान कर रहे हैं ये इनका मकाम नहीं है, ये तो हमारी अपनी जानकारी की हद है, उनका मकाम तो वरा है। हम जो उनका जिक्र कर रहे हैं इसलिए कि हम अपनी आकिबत दुरुस्त कर रहे हैं, उनको जरूरत नहीं कि उनका जिक्र हो, उनका जिक्र तो जमीनों आसमानों में हो रहा। नबी पाक अलैहिस्सलाम को अल्लाह तबारक व तआला ने चार साहबजादी अता फरमाई। कितनी? चार। बाद लोग कहते हैं एक, लेकिन हम कहते हैं चार, हकीकत यही है। उलमा ने लिखा और मुस्तनद रिवायात के मुताबिक सबसे बड़ी साहबजादी का नाम सैयदा जैनब रदियल्लाहु ताला अन्हा, दूसरी सैयदा रुकैया रदियल्लाहु ताला अन्हा, तीसरी सैयदा उम्मे कुलसूम रदियल्लाहु ताला अन्हा, और चौथी खातून जन्नत सैयदा फातिमतु ज़हरा रदी अल्लाह ताला अन्हा। सरकार के दो साहबजादे हजरत कासिम और हजरत अब्दुल्ला। हजरत कासिम की वजह से सरकार ने कुनियत रखी अबुल कासिम, ये नबी पाक अलैहिस्सलाम की कुनियत। अच्छा, ये तमाम साहबजादियां उम्मुल मोमिनीन सैयदा खतीजतुल कुबरा रदी अल्लाह ताला अन्हा के बतन से, जबकि एक साहबजादे इब्राहिम वो हजरत मारिया कुप्तिया के बतन से। ये नबी पाक अलैहिस्सलाम की मुबारक मुकद्दस औलाद। सैयदा खातून जन्नत रदी अल्लाह ताला अन्हा सबसे छोटी थी अपनी बहनों और नबी पाक अलैहिस्सलाम की सबसे ज्यादा चहीती थी। आपकी विलादत उस वक्त हुई जब कुरैश बैतुल्लाह की तामीर नौ कर रहे थे, उस वक्त आपकी विलादत हुई। इसमें गिरामी फातिमा जो फतमा से मुश्तक है, और फतमा के माना छुड़ाना रोकना। आपको फातिमा कहने की वजह तस्मिया ये है कि आप अहले ईमान को कयामत के दिन जहन्नुम से छुड़ा दो, रोक लेंगे। उलमा ने यह वजह लिखी। नबी पाक अलैहिस्सलाम आपसे बेहद मोहब्बत फरमाते थे। जब सरकार ने हिजरत फरमाई तो सिद्दीक अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु सरकार के साथ थे, मदीने तैयबा पहुंच गए। कुछ अरसे के बाद अपने खादिमों को भेजा कि जाओ मेरे अहले खाना को ले आओ। हजरत उसामा बिन जैद और एक और सहाबी ये गए نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے اہل خانہ کو لے کر مدینہ طیبہ پہنچ گئے۔ مدینہ پہنچ کر مسلمانوں نے سکھ کا سانس لیا۔ وہ کافروں کی طرف سے جو مستقل شورشیں، ڈر، خوف، یہ ساری چیزیں جو تھیں وہ ختم ہو گئیں، اور بظاہر مسلمان سکون سے ہو گئے، اطمینان سے ہو گئے۔ مسجد نبوی کی تعمیر ہو گئی، امہات المومنین کے حجرے قائم ہو گئے، سلسلہ شروع ہوا۔ ایک روایت کے مطابق آپ کی عمر 15.5 سال اور دوسری روایت کے مطابق 18 سال۔ جب ان کا نکاح ہوا حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ، روایت میں آتا ہے کہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ، یہ دونوں مسجد نبوی میں بیٹھے ہوئے تھے، اور ان کے ساتھ حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالی عنہ وہ بھی تھے، یہ تین بیٹھے تھے۔ سیدہ کے رشتے کے بارے میں گفتگو ہوئی تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ بڑے بڑے شرفاء اس رشتے کے لیے پیغام دے چکے ہیں، لیکن آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف ایک جملہ فرمایا، جسے اللہ چاہے گا، جسے اللہ چاہے گا۔ اور ظاہر ہے یہ ایک بہت بڑا شرط تھا، خاتم النبیین، شفیع المذنبین، محبوب رب العالمین صلی اللہ علیہ وسلم کی دامادی کا شرف حاصل ہو، خاتون جنت سے رشتہ ہونا کتنی بڑی بات ہے۔ تو بہت سے شرفاء نے پیغام دیا، سرکار نے فرمایا جسے اللہ چاہے گا۔ تو سیدنا فاروق اعظم اور صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہما یہ بیٹھے تھے، اور حضرت سعد بن معاذ آپس میں گفتگو ہو رہی۔ تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، لیکن اب تک علی المرتضیٰ نے پیغام نہیں دیا۔ سب نے دیا ہے لیکن علی نے پیغام نہیں دیا، ہو سکتا ہے کہ اللہ نے یہ رشتہ انہی کے لیے روکے رکھا۔ جس نے پیغام دیا، سرکار نے فرمایا جسے اللہ چاہے۔ تو پھر آپس میں گفتگو ہوئی اور انہوں نے کہا چلو علی کے پاس چلتے، کرم اللہ تعالی وجہ الکریم۔ اب یہ اٹھے تینوں، ان کے گھر گئے، گھر والوں نے کہا کہ وہ تو ہے نہیں، وہ تو ایک باغ میں گئے ہوئے۔ حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ نے اکثر ایسا کرتے تھے، آپ کے پاس ایک اوٹنی تھی اور پانی لانے کے لیے ایک مشک تھی، کسی کے باغ میں پانی ڈالنے کے لیے یا پانی لانے کے لیے آپ اسے استعمال کرتے تھے اور اس پر اجرت مل جاتی۔ انہوں نے کہا فلاں انصاری کے باغ میں گئے ہیں، یہ لوگ وہیں پہنچ گئے، دیکھا کہ حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ باغ سے باہر آ رہے۔ جب ان کی نظر ان پر پڑی، یعنی صدیق اکبر، فاروق اعظم، سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین، حیران ہوئے، کیا ہوا، کیا بات ہے؟ وہ دونوں مسکرائے تینوں، علی کوئی بات نہیں، ہم تو ملنے کے لیے آئے، قریب آئے، سلام و کلام، گفتگو، کہاں ہم اس لیے آئے ہیں کہ آپ کو معلوم ہے کہ حضور علیہ السلام کی شہزادی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا، ان کے رشتے بڑے بڑے شرفاء نے دیے، لیکن آقا نے فرمایا جسے اللہ چاہے، اور آپ نے دیا نہیں ابھی تک۔ آپ قریبی ہیں، چچزاد بھائی ہیں، اسلام لانے میں بھی اولین میں سے ہیں، آپ نے ابھی تک رشتہ نہیں دیا، ہمارا خیال ہے اللہ نے یہ رشتہ آپ ہی کے لیے روک کے رکھا، تو ایسا کریں کہ آپ چل کر رشتہ دیں، ہو سکتا ہے سرکار قبول کر لے۔ حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہوئے، انہوں نے دیکھا کہ علی رو رہے ہیں، کیا ہوا علی، کیا ہوا؟ کہاں، میرے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے، میں تو ایک غریب سادہ انسان ہوں، میں کیسے یہ پیغام دے سکتا ہوں، اور سرکار کیسے اپنی صاحبزادی کا نکاح مجھ سے کریں، میرے پاس تو کھلانے پلانے کے لیے کچھ نہیں، میں تو یہ مزدوری کر رہا ہوں۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا آپ پریشان نہ ہوں، آپ رشتہ دیں، اگر مسئلہ ہوگا تو مالی اعانت ہم بھی کریں گے، آپ چل کر رشتہ دیں۔ बड़ी उनको तसल्ली दी। उनका ठीक है, अब वो लोग चले हजरत अली शेरे खुदा रदी अल्लाह ताला के साथ मस्जिद में आए। ये लोग ठहर गए बाहर और हजरत अली शेरे खुदा रदी अल्लाह ताला मस्जिद नबवी में तशरीफ लाए। सरकार रौनक अफरोज आए, हिम्मत नहीं हुई कि मैं कैसे कहूं, अदब भी है एहतराम भी है और अपनी कैफियत भी जानते हैं, सरकार के सामने वैसे ही बात करते हुए डरते हैं, खामोश बैठ गए। अरे उनको बताने की जरूरत क्या, वो तो पहले ही जानते, बताया तो उसे जाए जो जानता ना हो, जो फर्श पे रहकर अर्श की खबरें दे वो नहीं जानता। अली किस लिए आए, अली कैसे आए, पूछा फिर भी मुस्कुरा के कैसे आए। या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं इस काम के लिए आया, मकसद बयान कर दिया, पहले बयान नहीं कर रहे, सरकार ने बार बार पूछा, हिम्मत करके बयान कर दिया। हुजूर अलैहिस्सलाम ने जैसे ही सुना, चेहरे मुबारक पर खुशी के आसार जाहिर हुए और चेहरे मुबारक चमक उठा। फरमाया, अली तुम्हारे पास क्या है? सरकार, एक तलवार है, एक जिरा है, एक ऊंटनी है। फरमाया, तलवार तो तुम्हारे काम की है, जिरा जो है वो भी जंग में काम आएगी, और ऊंटनी पर तुम पानी वगैरह लेकर आते हो। ऐसा करो कि तुम जिरा जो है इसको बेचकर कुछ इंतजाम कर दो, जितने में भी बिके तुम पैसे ले आओ। खुश हो गए, मस्जिद से बाहर आए, देखा कि ये लोग खड़े हैं, इनको जैसे ही सुनाया ये भी खुश हुए और ये सब दौड़कर मस्जिद में चले। उसके बाद तो खुशी का आलम दीदनी था, हर सहाबी खुश था, खुसूसन सिद्दीक अकबर, फारूक आजम, साद बिन माज रदी अल्लाह ताला अन्हु अजमईन, इन तीनों ने हजरत अली शेर खुदा को इस बात की तरफ मुतवज्जो किया था और तसल्ली दी थी। हजरत अली फरमाते हैं कि सरकार ने रिश्ता कबूल कर लिया, इन्होंने मुबारकबाद दी और उसके बाद सिलसिला शुरू हुआ। हजरत अली फरमाते हैं कि मैं वो जिरा लेकर निकला और मेरी मुलाकात हुई हजरत उस्मान गनी रदी अल्लाह ताला अन्हु। अली कहां जा रहे हैं, सारा मामला उनको सुनाया, वो भी खुश हुए, मुबारकबाद दी और पूछा कि कितने में बेचेंगे। हजरत अली शेर खुदा रदी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया कि आप कितने में ले ले, बाद रिवायत में यह आया कि 700 दिरहम और मुख्तलिफ रिवायत। बहरहाल कहते हैं कि मैंने बताया कीमत, उन्होंने मुझे दे दी, मैंने जरा उनको दे दी। भाई यही होते ना, कीमत लेकर चीज दे दी जाती है, तो हजरत अली ने हजरत उस्मान को जरा दे दी, हजरत उस्मान ने पैसे हजरत अली को दे दिए और उसके बाद वही जरा तोहफे में हजरत अली को पेश कर। इसको कहते हैं ईसार, इसको कहते हैं मोहब्बत। साहबा और अहले बैत में कितनी मोहब्बत थी, वो जानते थे कि जंग में इनको जरा की जरूरत होगी और अभी इनको पैसे की जरूरत है और ये इतने खुददार हैं कि वैसे अगर मैं पैसे दूं तो ये लेंगे नहीं, अली की खुददारी पर हर्फ आएगा। अली ने कभी किसी के आगे हाथ नहीं फैलाया, इसलिए वो जिरा उनसे खरीद कर पहले पैसे उनको दे दिए, जिरा उनसे ले ली। कहा, अली ये मैंने आपसे ले ली। कहां ले ली, अब ये तोहफे में आपको पेश कर। कहते मैं आया और पैसे लेकर सरकार की खिदमत में पेश किए और उस्मान गनी रजी अल्लाह तआला का तर्ज अमल जो उन्होंने मेरे साथ इख्तियार किया था मैंने सरकार को बताया। आका ने हाथ उठाकर हजरत उस्मान के लिए दुआ की। एक कहते हैं दुआएं कराना, एक कहते दुआ लेना। याद रखा करो, मैं अक्सर बताता हूं लोगों को लेकिन भूल जाते हैं सारा, पता नहीं क्या बात है, इनको शायद बादाम खिलाने पड़ेंगे, किशमिश खिलानी पड़ेगी। एक है दुआएं कराना, एक है दुआएं लेना, दोनों में फर्क है। दुआएं कराना, हमारे लिए दुआ कर दीजिए, वो कहते हमारे बच्चे के लिए, वो कहते फलां के, ठीक है कर देंगे, यही है ना। और एक है दुआएं लेना, ऐसा काम करना दिल से दुआ निकले। बात समझ में आई, ऐसा काम करना दिल से दुआ निकले। और उस्मान गनी रजी अल्लाह ताला ने उस वक्त ऐसा ही काम किया, आका ने हाथ उठाकर उनके लिए दुआ की। सरकार ने फरमाया, सिद्दीक अकबर रजी अल्लाह तआला ने उसे पैसे दिए, जाओ कुछ सामान खरीद लाओ, निकाह के लिए जो जरूरी सामान होता है वो खरीद लाओ। अब निकाह का इंतजाम हो रहा, किसके निकाह का? खातून जन्नत शहजादी शहनशाह कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। शायर ने लिखा किसके निकाह का इंतजाम हो रहा है, किसकी शादी हो रही है, सुनो। वो सुबह नूरे चश्मे रहमतन लिल आलमी जहरा नगीने खातमे तस्कीने खत्मुल मुरसली जहरा। वो जहरा जो शबीए उस वे सरकार आली थी, अली से आजुसी जहरा की शादी होने वाली थी।
अल्लाह
अली से आजुसी जहरा की शादी होने वाली थी। साहब इंतजाम में लगे हुए, आका की शहजादी की शादी, सिद्दीक अकबर जा रहे हैं, फारूक आजम जा रहे हैं। सरकार ने फरमाया सलमान फारसी बिलाल को भी ले जाओ। हजरत सलमान फारसी और बिलाल हबशी रजी अल्लाह तआला अन्हुम, इन दोनों को भी ले जाओ, ये सामान ले आएंगे। गए साहब, खुशी खुशी सामान लेकर आए और हुजूर अलैहिस्सलाम ने खुद निकाह पढ़ाया और फरमाया इस निकाह में 40,000 मलाइका ने शिरकत की है। गौर करो, 40,000 मलाइका ने शिरकत की है। क्यों ना हो, हम अपनी औलाद की शादी करें, जमीन वालों को बुलाते हैं, शहनशाह है कौनो मका की शहजादी की शादी थी, जमीन वाले भी शरीक थे, आसमान वाले भी आ गए। 40,000 मलाइका, अरे वो भी तो हुजूर के उम्मती थे, वो भी तो खुश हो रहे होंगे, आज तो हमारे आका की शहजादी की शादी। फरमाए इस निकाह में 40,000 मलाइका ने शिरकत की है। इस रिवायत को कशफुल गुम्मा फी मारफतिल आइमा, इसमें अली बिन ईसा अरबली ने इसको रिवायत किया जो हमने आपके सामने बयान की, ये शादी की रिवायत। निकाह हो गया, हाफिज इब्ने हजर अल इसाबा में लिखते हैं कि निकाह हुआ माह रजब 1 हिजरी में और रुखसती गजवे बदर के बाद 2 हिजरी में हुई। खातून जन्नत रजी अल्लाह ताला अन्हा की निकाह हो गया। अच्छा, जब निकाह होता है तो जहेज भी होता है ना, जहेज शादी से पहले ही होता है, बल्कि यहां तो पहले ही लिखवा दी जाए ये चीजें देनी है भाई। बाज कम्युनिटी में तो फ्लैट भी दिया जाता, फ्लैट दो गए वो बेचारा कमा कमा के मर गया, अगर 2-3 बेटियां हुई तो उसके तो कबाड़ा ही होता। फ्लैट भी जरूरी है, इस चीज को खत्म होना चाहिए, ये हम खुद खत्म करें तब है, जिनके लड़के हैं वो खुद खत्म करें, वो कहें नहीं हमें नहीं चाहिए, हमें सिर्फ लड़की चाहिए बस। लेकिन बहरहाल बातें सब करते हैं, लेकिन जब लेने का मौका आता है आने तो आने तो ठीक है, अगर उनमें से उन कम्युनिटी में से कोई बैठा हो तो नाराज ना हो, हकीकत तो यही है। खैर बहरहाल अब सुनो, आका दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या जहेज दिया अपनी शहजादी को। उलमा ने लिखा कि शहनशाह कौनो मका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी शहजादी को जो जहेज दिया वो बान की 1 चारपाई, चमड़े का 1 गद्दा जिसके अंदर रुई के बजाय खजूर के पत्ते, 1 छागल, 1 मशक पानी लाने के लिए और 2 चक्कियां, यह है कुल जहेज शहनशाह कौनो मका की शहजादी। और उसके मुकाबले में आज अगर हम देख लें तो हमने कितना इसराफ कर लिया, हम सब उसमें शामिल। अगर सब मिलकर ही इसको कम करें तब कम हो, एक आदमी करने से नहीं होगा। खैर पारा, अब इनको क्या मिला सुनिए। जहज उनको मिला जो कुछ शहंशाहें दो आलम से, मिला है दर्स हमको सादगी का फखरे आदम से। मताए दुनिया भी जो हिस्से जहरा में आई थी, खजूरी खुर्दरे से बान की एक चार पाई थी। मुशक्कत उम्र पर करना लिखा था जो मुकद्दर में, मिली थी चक्कियां दो ताके आटा पीस लें घर में, मिली थी चक्कियां दो ताके आटा पीस लें घर में। ये है कुल जहज सैयदा खातून जन्नत रदियल्लाहु ताला अन्हा। अच्छा, 2 हिजरी में जब रुखसती हुई, रुखसत होकर अपने शौहर हजरत अली मुर्तजा रदियल्लाहु ताला अन्हों के घर तशरीफ लाई, सरकार दो आलम अलैहिस्सलातु वस्सलाम खुद तशरीफ ले गए। उनके घर में बैठकर आका ने वुजू फरमाया और वुजू का जो बचा हुआ पानी था उस पर दम किया, इन दोनों पर दम किया और पानी इन दोनों पर छिड़का। अली इधर आओ, हजरत अली पहुंचे, उन पर पानी छिड़का। फातिमा तुम इधर आओ, वो तशरीफ लाई, उन पर पानी छिड़का। और उसके बाद रहमतों वाले हाथ उठाए, अल्लाहुम्मा बारिक फीहिमा वबारिक अलैहिमा वबारिक लहुमा फी नस्लेहिमा। सरकार ने दुआ फरमाई, ए अल्लाह इन दोनों में बरकत डाल दे और इनकी नस्ल में भी बरकत डाल। सरकार ने दुआ फरमाई, आका की दुआ कैसे कबूल ना हो। ऐसी बरकत हुई कि आज तक औलाद अली औलाद फातिमा मौजूद हैं, कयामत तक मौजूद रहे, निजात की कश्ती की तरह। वो अलग है कि लोग कदर करें या ना करें, पहचाने या ना पहचाने, लेकिन औलाद मौजूद है। नबी पाक अलैहिस्सलाम के खादिम थे हारसा बिन नौमान, उनके बहुत सारे मकानात थे, कुछ मकान उन्होंने सरकार को हदियतन तोहफतन दिए थे। तो जब हजरत अली शेर खुदा रदी अल्लाह ताला अन्हु का निकाह हुआ तो आपने एक मकान किराए पर ले लिया और उस मकान में रुखसत होकर खातून जन्नत रजी अल्लाह ताला अन्हा गई। तो एक दिन आप तशरीफ लाई नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम के पास और फरमाया, बाबा जान हारिसा बिन नौमान से कहें कि एक मकान हमें भी दे दे। सरकार ने फरमाया, नहीं ये मुनासिब नहीं, इसलिए कि वो पहले ही मुझे कई मकान दे चुका है, तो अब मुझे ये अच्छा नहीं लगता कि मैं फिर उनसे कहूं कि मेरी बेटी के लिए मकान दे दो, वो पहले ही खुद कई मकान दे चुका है। हुजूर अलैहिस्सलाम के ये अल्फाज ये गुफ्तगू किसी ने सुन ली और हारसा बिन नौमान के कानों तक ये बात पहुंच गई। वो फौरन बारगाहे रिसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में हाजिर हुए, अर्ज की, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मैंने ये सुना है। फरमाया, सही सुना है, हम मुनासिब नहीं समझते, तुम पहले ही खिदमत कर चुके हो, तुमने फला फला वक्त मकाना दिए। आका ये जितने मकान हैं सब आप ही के तो हैं, मेरा क्या है, मैं भी आपका हूं, ये मकान भी आपके हैं, ये सब आपके हैं, और आपकी शहजादी के लिए अगर मैं मकान दूं मेरे लिए बाइस फखर, मेरे निजात का बाइस है। जो कुछ उस आशिक को कहना था आका की बारगाह में कहा, खुशामद की और एक मकान सैयदा के लिए दे दिया। हुजूर ने उनके लिए दुआ फरमाई। तो उस वक्त फिर वो मुंतकिल हो गई उस मकान में जो हारिसा बिन नौमान ने दिया था। अच्छा, अब वहां क्या कैफियत थी? जो चीजें नबी पाक अलैहिस्सलाम ने जहेज में उनको दी, मोतबर रिवायात के मुताबिक हजरत अली शेर खुदा रजी अल्लाह तआला अन्हो बाद में उन चीजों में कोई इजाफा ना कर सके, यानी उनकी कोई ऐसी आमदनी नहीं थी कि उन चीजों में इजाफा करते, कि दो तीन चरपाइयां मंगा लेते, दो तीन पलंग मंगाते, चादरें मंगाते, फला चीज मंगाते, कोई चीज नहीं, वही चीजें उनके पास रही, उसी में अपनी जिंदगी गुजार दी। खातून जन्नत रजी अल्लाह ताला अन्हा चक्की पीसती थी और कुरान की तिलावत करती थी। आज हमारी औरतें करती हैं, चक्की तो गायब ही हो गई है ही, अब तो ग्राइंडर मौजूद है, डालो बटन दबाओ खट से हो गए सर, लो भाई पीस के दे दिए। पहले बैठती थी, मेहनत करती थी, पीसती थी सिल बट्टे पर और चक्कियां चलाती थी, फिर आटा पीसती थी, तब जाके कहीं रोटी बनती थी। अब तो ऐसा नहीं है ना, और अगर खाना भी पकाती है तो हैंड फ्री लगा हुआ होता है, मोबाइल बातचीत हो रही, सालन भी पक रहा है, सहेलियों से बातचीत भी हो रही, कभी नमक ज्यादा तो कभी मिर्चें ज्यादा तो कभी कुछ ज्यादा, यही सारी चीजें होती है ना बाहर। खैर, सारी औरतें ऐसी नहीं है, ऐसा नहीं कि ये जो सुन रही है बेचारी नाराज हो जाए, ये तो सही औरतें। खैर बाहर, खातून जन्नत रजी अल्लाह ताला अन्हा की शान ये थी, खाना पका रही है तिलावत कुरान जारी है। अरे जिस खाने पर तैयारी में कुरान पढ़ा जाए उसमें बरकत ना हो तो फिर किसमें बरकत, उसमें बरकत ना हो तो फिर किसमें। अच्छा, चक्की चलाते चलाते मुबारक हाथों में गड़े पड़ गए, तो एक दिन लौंडी और गुलाम आए, उस जमाने में लौंडी और गुलाम का था ना रिवाज, तो कोई जंग होती थी, माले गनीमत में आते थे, तो सरकार दो आलम अलैहिस्सलाम तकसीम फरमा देते, किसी को लौंडी दी, किसी को गुलाम, इसी तरह जो सामान आता था वो भी सहाबा में तकसीम होता था। तो हजरत अली करम अल्लाह ताला वजहुल करीम ने फरमाया कि तुम जाओ और जाकर लौंडी गुलाम में से कोई एक ले आओ, सरकार की बारगाह में अर्ज करो। तुम चक्की पीसती हो, हाथों में गड़े पड़ गए, तो एक लौंडी आ जाएगी, वो ये काम कर लेगी। रिवायत में आता है कि खातून जन्नत रजी अल्लाह ताला अन्हा गई, सरकार ने देखा बेटी कैसे आई, हिम्मत नहीं हुई कि जबान से बात निकाले, खामोश रही और उसके बाद उठकर आ। हजरत अली ने पूछा क्या हुआ, कहा मेरी हिम्मत नहीं हुई कि मैं बाबा जान से ये कहूं, कहा चलो मैं चलता हूं मेरे साथ चलो। दोनों गए, जाकर बैठे, आका ने पूछा कैसे आए, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये फातिमा इसलिए आई थी कि चक्की चलाते चलाते इनके हाथों में गड़े पड़ गए, तो ये जो लौंडी गुलाम आए हैं आप इनमें से कोई एक लौंडी आप दे दें ताकि वो ये काम कर ले। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया नहीं, ये हरगिज नहीं हो सकता। क्यों? ये जितने लौंडी गुलाम आए हैं हम इनको फरोख करेंगे और उससे जो पैसा आएगा वो असहाबे सुफा पर खर्च करेंगे, ये मेरे सहाबा जो भूखे प्यासे सुफा के चबूतरे पर बैठे हैं, न इनको खाने की होश है न पीने की, कुछ नहीं, जो मिल गया खा लिया, जो मिल गया पहन लिया ओढ़ लिया, मैं इन पर खर्च करूंगा, मैं तुम्हारे लिए ये गुलाम लौंडी नहीं दे सकता। और दूसरी हिकमत क्या थी, अगर हुजूर अलैहिस्सलाम कोई लौंडी खातून जन्नत रजी अल्लाह ताला अन्हा को दे देते, हो सकता है कोई इतराज करता, सहाबा में से तो कोई नहीं करता, जाहिर है वो जानते थे सरकार की शहजादी, लेकिन कोई मुनाफिक, कोई बदबख्त, कोई दुश्मन रसूल ये इतराज कर सकता था कि इन्होंने अपने घर वालों को, अपनी औलाद को, अपनी बेटी को इन्होंने बड़ा आराम पहुंचाया, ये लौंडी गुलाम तो मुसलमानों में तकसीम होने थे, इन्होंने अपनी बेटी को दे दिया। आका ने वहीं फरमाया ये नहीं हो सकता, ये नहीं होगा, इन लौंडी गुलामों को फरोख किया जाएगा, जो आमदनी आएगी अस्हाब सुफा पर मैं खर्च करूंगा, उनके लिए खाने पीने का हम इंतजाम करेंगे, उनके पहनने ओढ़ने का इंतजाम करेंगे, क्योंकि अस्हाब सुफा को आप जानते थे ना, उनकी एक ही तड़प थी, एक ही मिशन था, दीदे सनम यादे सनम, महबूब को देखना और उनकी याद में रहना, बस, और कोई उनकी जिंदगी की ख्वाहिश नहीं। हजरत अबू हुरैरा उन्हीं में से थे कि जिन्होंने सबसे ज्यादा हदीसें जिनसे मरवी हैं, इसीलिए कि हाजिर बाश थे बारगाह मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अब क्या हुआ, खामोश होकर आ गए, कोई शिकवा शिकायत नहीं, खामोश होकर खातून जन्नत रजी अल्लाह ताला अन्हा वापिस आ गए। जब ये आई तो हुजूर अलैहि सलातो वसलाम फिर खुद इनके घर तशरीफ लाए इनकी दिलजोई के लिए। सरकार ने सोचा कि बेटी के दिल पर एक सदमा हुआ। आका ने फरमाया, फातिमा मैं तुम्हें एक ऐसी चीज ना बताऊं जो लौंडी और गुलाम से बेहतर हो। हां बाबा जान, जरूर बताइए। फौरन तैयार। फरमाया, सुनो, सोने से पहले 33 मरतबा सुभान अल्लाह, 33 मरतबा अल्हम्दुलिल्लाह और 34 मरतबा अल्लाहु अकबर पढ़कर सो जाया करो। इसमें बहुत कुछ है और ये उस लौंडी गुलाम से बेहतर है। हजरत अली शेर खुदा रजी अल्लाह ताला नु अपने दौरे खिलाफत में जंगे सिफीन से वापस आए हैं, फरमाया मैं आज तक ये तस्बीह पढ़ता हूं जो सरकार ने फातिमा को बताई। निर सदी गुजर चुकी, लोगों ने पूछा सिफीन की रात भी आपने पढ़ी? हां मैंने उस रात भी मैंने ये पढ़ी। आका ने जो फरमाया था मैं हर रात ये पढ़कर सोता। तो आप देखें कि हुजूर पुरनूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किस तरह अपनी औलाद के साथ सुलूक किया कि कोई उंगली ना उठा सके, कोई एतराज ना कर सके। सैयदा खातून जन्नत और हजरत अली शेर खुदा रजी अल्लाह ताला अन्हु दोनों ये तस्बीह पढ़ते रहे और उसके बाद इन्होंने कभी भी ये मुतालबा नहीं किया कि हमें गुलाम और लौंडी दें। वो जानते थे कि आका के फरमान की हिकमत मसलियत क्या है और जो इन्होंने बता दिया है वही हम पढ़ें। एक दिन नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम अपने घर में बैठे हैं काशाने नबुवत। दोपहर है, गर्मी है, शिद्दत है, तमाजत है। आका ने उम्मे ऐमन को भेजा, जाओ मेरी बेटी की खबर लेकर आओ। चली गई। सैयदना इमाम हसन रजी अल्लाह ताला अन्हु की विलादत हो चुकी थी। आज हमने इन दोनों की विलादत का जिक्र नहीं किया, वो इंशाल्लाह कल करेंगे, क्योंकि कल हजरत इमाम हसन रजी अल्लाह ताला अन्हु का बयान होगा तो उसी में हम दोनों शहजादों की विलादत का जिक्र करेंगे। रमजान मुबारक का महीना था, दोपहर का वक्त था, शिद्दत की गर्मी पड़ रही थी। आका दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ख्याल आया कि मेरी बेटी पता नहीं किस हाल में होगी, उम्मे ऐमन जाओ जाकर मेरी बेटी की खबर। उम्मे ऐमन कहती हैं कि मैं गई तो जब मैं दरवाजे के करीब पहुंची तो चक्की चलने की आवाज आ रही। चक्की चलती थी ना, उसकी आवाज पैदा होती, और झूला झूलता था उसकी भी आवाज होती थी। दरवाजे के बाहर से झूला झूलने की और चक्की चलने की आवाज आ रही। इन्होंने दरवाजे पे दस्तक दी, किसी ने नहीं खोला। फिर थोड़ी देर ठहर के दस्तक दी, फिर नहीं खोला। फिर तीसरी मरतबा, फिर नहीं खोला। हैरान हूं भाई, जब चक्की चलने की आवाज आ रही है इसका मतलब है कोई चला रहा है, तो जो चला रहा है वो दरवाजा क्यों नहीं खोल रहा? और झूला झूलने की आवाज आ रही है, कोई झूला झूला रहा होगा तो उसको चाहिए कि वो दरवाजा खोले। और जाहिर खातून जन्नत रजी अल्लाह ताला ना होंगी, कोई खादिम तो है नहीं, कोई गुलाम तो है नहीं। तीन मरतबा इन्होंने दस्तक दी, किसी ने दरवाजा नहीं खोला, लेकिन आवाजें आ रही हैं, चक्की चलने की आवाज, झूला झूलाने की आवाज। कहती मैंने सुराख में से झांक कर देखा तो हैरान कुन मंजर था। मैंने देखा कि खातून जन्नत सैयदा फातिमा तो ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा आराम से अपने बिस्तर पर सो रही, चक्की खुद ब खुद चल रही है, चलाने वाला नजर नहीं आता। इमाम हसन का झूला झूल रहा है, झुलाने वाला नजर नहीं। मैं हैरान हुई, ये चक्की कौन चला रहा? ये झूला कौन झुला रहा? वापिस आ गई नबी पाक अलैहिस्सलाम के पास। आका ने पूछा क्या खबर लाई, मेरी बेटी फातिमा की क्या कैफियत है? या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सरकार मैं तो हैरान कुन मंजर देखकर आया, क्या हुआ? आका जब मैं गई, मैं दरवाजे के करीब पहुंची तो चक्की चलने की आवाज बाहर ही आ रही थी, झूला झूलने की आवाज बाहर आ रही थी। तीन मरतबा दस्तक दी, किसी ने दरवाजा नहीं खोला। और जब मैंने सोराख में से झांक कर देखा तो आपकी शहजादी आराम से सो रही हैं, चक्की खुद ब खुद चल रही है, चलाने वाला नजर नहीं आता। इमाम हसन का झूला झूल रहा है, झुलाने वाला नजर नहीं आता। आका ने सुना, मुस्कुराए, हैरान नहीं हुए, मुस्कुराए। हैरान तो वो हो जिसको पता ना हो, वो तो सब जानते हैं। कहती मैंने देखा नबी पाक अलैहिस्सलाम मुस्कुराए, फरमाया मेरी बेटी अल्लाह की बंदी है, उसने रोजा रखा हुआ है, अल्लाह ने उस पर नींद गालिब कर दी कि वह रोजे में कुछ देर आराम कर ले, और उसकी खिदमत के लिए आसमान से हूरों को भेज दिया। इसीलिए शायर ने लिखा, वो खातून जिना मासूम हूरे बांदिया जिनकी, वो खातून जिना मासूम हूरे बांदिया जिनकी, मलक जन्नत से आकर पीसते थे चक्कियां जिनकी, मलक जन्नत से आकर पीसते थे चक्कियां जिनकी। ये है निशान। सरकार ने बता दिया, बेटी तुम्हें इन इंसान खादिमों की जरूरत नहीं, आसमान से फरिश्ते तुम्हारी खिदमत करेंगे। हकीकत तो यही थी, शहनशाह कौन मकां की शहजादी थी। अरे ये जमीन वाले क्या उनकी खिदमत करते, और क्या लौंडी और गुलाम उनकी खिदमत करते, जो जन्नत की हूरें आई और आकर चक्कियां पीस रही हैं और शहजादे का झूला झूला रही। ये है उनकी शान, मामूली मकाम नहीं है। आपकी कैफियत ये थी कि नबी पाक अलैहिस्सलाम से बेहद मोहब्बत करती थी। किसी ने पूछा उम्मुल मोमिनीन सैयदा आयशा सिद्दीका रदियल्लाहु ताला अन्हा से, किसके मुताल्लिक? खातून जन्नत फातिमतु ज़हरा रदियल्लाहु ताला अन्हा के मुताल्लिक। वो कैसी थी, उनके अहवाल कैसे थे, अखलाक कैसे थे, किरदार कैसा था, आदात और अतवार कैसी थी? अब सुनो उम्मुल मोमिनीन का जवाब। सैयदा आयशा सिद्दीका रदी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं, फातिमा नशिस्तो बरखास्त में, उठने में, बैठने में, चलने में, बोलने में बिल्कुल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुशाबा, हर चीज में सरकार के मुशाबा। उन्हीं की औलाद, उन्हीं का खून। सरकार ने फरमाया, फातिमा मेरे जिगर का टुकड़ा है, जिसने इसे अजियत पहुंचाई उसने मुझे अजियत पहुंचाई। इतनी मोहब्बत करते नबी पाक, मेरे जिगर का टुकड़ा है फातिमा। कुछ दिन हो जाते तो खातून जन्नत रजी अल्लाह ताला अन्हा के घर तशरीफ ले जाते, उनकी खैरियत मालूम करते। अच्छा, अजीब कैफियत थी, जब सरकार तशरीफ ले जाते खातून जन्नत खड़ी हो जाती, अदब से बाबा जान के दस्ते मुबारक पर बोसा देती और अपनी जगह बिठाती। और जब ये आका दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में हाजिर होती, आका अपनी शहजादी को देखकर खड़े हो। वो तो छोटी थी, वो तो बेटी थी, वो बाप थे, मर्तबा बुलंद था, लेकिन खड़े हो गए, उनकी पेशानी को बोसा देते, हाथ पकड़कर अपने पास बिठा। क्यों? देखो, एक है कयाम ताजीमी और एक है कयाम मोहब्बत। बात समझ में आई? कयामे ताजीमी और कयामे मोहब्बत। अगर बड़ा छोटे को देखकर खड़ा हो जाए तो कयामे मोहब्बत, और छोटा बड़े को देखकर खड़ा हो जाए कयाम-ए-ताज़ीमी, कयाम-ए-ताज़ीमी। अब हम जो सलाम में कयाम करते हैं ये कौन सा कयाम है? कयाम-ए-ताज़ीमी। वो कहते जी तुम क्यों खड़े हो जाते हो, तुम क्यों खड़े हो जाते हो, क्या तुम्हें नजर आते हैं, क्या हुजूर आते हैं? हमने कहा आते नहीं है, आ सकते हैं, तुम रोक नहीं सकते, आ सकते हैं। क्यों? दुनिया में जहां भी महफिल मिलाद हो रही है वो सब सरकार की बारगाह है। हमने तो महफिल सजा दी, हम तो सलाम के लिए खड़े हो गए, आका तशरीफ ले आए उनकी मेहरबानी, अगर गुलामों पर करम फरमा दे उनकी मेहरबानी, हम तो बाअदब होकर पहले से इंतजाम करके खड़े, हुजूर तशरीफ ले आएंगे आपका करम। वो कहते तुम्हें नजर आते हैं क्यों ताजीम करते हो? हमने कहा ताजीम के लिए नजर आना जरूरी नहीं, याद रखिए ताजीम के लिए नजर आना जरूरी नहीं। क्यों? बैतुल्ला आपको नजर आता है? नजर आए बैतुल्ला? क्यों ताजीम करते? हुक्म है ना कि किबले की जानिब पैर ना करो, सरकार ने फरमाया अपने वॉशरूम बैतुल खला बनाओ तो इस अंदाज में बनाओ कि ना मुंह किबले की जानिब हो ना पीठ किबले की जानिब। इस बात को याद रखिए, अक्सर लोग इसको नजरअंदाज कर जाते हैं और इस बात की तरफ तवज्जो नहीं देते। मकान बनवा रहे हैं पता चला कि वॉशरूम ऐसा बना दिया किबले की जानिब बैठे या पीठ किबले की जानिब, ये किबले की बेअदबी है, ये गुस्ताखी है। इस अंदाज में हो कि ना चेहरा किबले की तरफ हो ना पीठ किबले की तरफ हो, इस तरह खास तौर पे इस बात को याद रख, अदब है। बा अदब बा नसीब, बे अदब बे नसीब। इस्लाम अदब सिखाता है, हर मामले में अदब है, हर छोटे पर बड़े का अदब लाजिम है, हर शागिर्द पर उस्ताद का अदब लाजिम है, हर मुरीद पर पीर का अदब लाजिम है, औलाद पर वालदैन का अदब लाजिम है, छोटे भाई पर बड़े भाई का अदब लाजिम है, अदब ही है सब कुछ। और जो अदब ना करे वो बेअदब है और बेनसीब। तो ताजीम के लिए नजर आना जरूरी नहीं, किबला नजर नहीं आता मगर ताजीम करते हैं या नहीं। रिवायत में आता है कि एक शख्स अपनी कौम में नमाज पढ़ाता था, नमाज बड़े गौर से सुनिए, नमाज पढ़ाता था, सरकार के सामने उसने किबले की जानिब थूक दिया, आका ने फरमाया आइंदा ये इमामत ना करे, सिर्फ थूका है आइंदा ये इमामत ना करे। अब नमाज का टाइम हुआ, वो आ गए खड़े हो गए, लोगों ने कहा नहीं जी आपके पीछे नहीं पढ़ेंगे। क्यों नहीं पढ़ेंगे? आपने किबले की जानिब थूका है, आका ने मना कर दिया, किसी ने नहीं पढ़ी। बड़ा परेशान हुआ, हुजूर अलैहिस्सलाम की बारगाह में हाजिर हुआ, सरकार आपने ऐसा फरमाया? फरमाया हाँ मैंने ऐसा फरमाया, तू ने किबले की बेअदबी की है, तेरे पीछे नमाज जायज है। अब ये कहते जी तुम क्यों नमाज नहीं पढ़ते, बात समझ रहे ना, वजाहत की जरूरत नहीं, फला मस्जिद में आप नहीं पढ़ते, फला मस्जिद में नहीं पढ़ते, फला में नहीं पढ़ते, दौड़ दौड़ के मस्जिद अमीर हमजा में सब चले आ रहे हैं जी, यहां पढ़ लेंगे यहां पढ़ लेंगे, वो उधर वाली में नहीं उधर वाली में नहीं। क्यों? हमने कहा सुनो, जो काबे की ताजीम ना करे, जब उसके पीछे नमाज जायज नहीं, तो जो काबे की ताजीम ना करे उसके पीछे कैसे नमाज जायज? अरे काबे को इज्जत मिली तो मेरे रसूल की वजह से, अजमत मिली तो रसूल की वजह से, ये हज ये उमरा ये सारी चीजें अगर हमें मिली तो सरकार की वजह से, जब उन्हीं की ताजीम दिल में नहीं है तो हम कैसे उसके पीछे खड़े हो जाएं और कैसे उसको अपना इमाम बना लें? इमाम उसी को बनाएंगे जिसके दिल में आका की मोहब्बत होगी, ताजीम होगी, अदब होगा, एहतराम होगा। इसीलिए तो इमाम अहले सुन्नत ने फरमाया था हाजी आओ शहनशाह का रोजा देखो, काबा तो देख चुके अब काबे का काबा देखो। तुमने उसको देखा जिसके सामने तुम झुकते हो, अब आओ उस शहनशाह का रोजा देखो कि जी विलादत के वक्त जिसकी जानिब काबा भी झुक रहा, काबा तो देख चुके। काबा तो देख चुके, अब काबे का काबा देखो। बात समझ में आ गई? तो कयाम-ए-ताज़ीमी और कयाम-ए-मोहब्बत, अगर छोटा बड़े को देखकर खड़ा हो जाए कौन सा कयाम? भूल गए, इतनी सी बात भूल गए, तो आगे क्या याद रखें? कयाम ताजीमी, और बड़ा छोटे को देखकर खड़ा हो जाए कयाम मोहब्बत। इसीलिए हम कहते हैं कि हमारे कयाम पर मुतलकन फतवा मत लगाओ, पहले देखो कि हम खड़े क्यों हुए हैं, मोहब्बत में खड़े हुए हैं, इताअत में खड़े हुए हैं, या रसूल की आमद पर खड़े हुए हैं, अदब में खड़े हुए हैं, इहतराम में खड़े हुए, असल चीज। अच्छा, दूसरी बात एक और बताऊं, बड़े मजे की बात है, सलाम का ताल्लुक ही कयाम के साथ है। सलाम का ताल्लुक ही कयाम के साथ है, कभी भी बैठकर सलाम किया ही नहीं जाता, किया जाता है। अब मैं एक मिसाल आपको दूं, आप गए एक साहब के घर में, जाकर आपने दरवाजा खटखटाया, साहिब खाना बाहर निकले, आपने सलाम नहीं किया, क्यों जी? जायज नहीं है जी, जायज नहीं। उसके बाद घर में जाकर बैठ गए, जब बैठ गए तो कह रहे हैं अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। वो कहेंगे क्या हो गया, आपकी तबीयत ठीक है? ये ऊपर की इमारत जो है ये सही है? भाई सलाम तो पहले होता है, मुसलमान का काम क्या? अव्वल सलाम बादल कलाम। तो जब घर में आके बैठ गए उस वक्त क्यों नहीं किया? कहते नहीं, खड़े होकर जायज नहीं है सलाम, खड़े होकर जायज नहीं है। अरे जब हम एक दूसरे को बैठकर सलाम नहीं करते तो शहनशाह है कौन हो मका को बैठकर कैसे करोगे? इसीलिए हम खड़े हो जाते हैं। आका हम तो खड़े हो गए, अब आप तशरीफ ले आए, आपकी मेहरबानी। अब आप एक जुमला सुनते हैं ना, हम क्या कहते हैं, बारगाह रिसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में दुरूद पढ़िए, दुरूद का नजराना पेश कीजिए, ये कहते हैं ना। तो ये सरकार ही की तो बारगाह है, ये उन्हीं की बारगाह है, वही शहनशाह है। पूरी कायनात में जहां भी महफिल होगी शहनशाह आका दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये सब उन्हीं की बारगाह है। और इस यकीन के साथ दुरूद पढ़ो, इस यकीन के साथ सलाम पढ़ो कि आका सुन भी रहे हैं और अपनी शान के मुताबिक जवाब भी अता फरमा। इसीलिए जब खाली बैठो दुरूद पढ़ते रहो, दुरूद अल्लाह का फरमान है, नबी की शान है, हमारा ईमान है, अहले सुन्नत की पहचान है, और दुरूद पढ़ने वाले से दूर शैतान है और करीब रहमान है। जो दुरूद ना पढ़े वो भी कोई मुसलमान है? अल्लाहुम्म सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन सलातन दाइमतन बिदवामिल मलिकिल हय्यिल कय्यूम। जिक्र क्या चल रहा था? कयाम। चलो शुक्र है, याद। मैं इसीलिए पूछता हूं, ऐसे नहीं कि आप लोग खाली बैठे, सुनते रहिए, गौर से सुने, याद रखें और दूसरों तक पहुंचाएं। इस मजमे में किसी एक की इस्लाह हो जाएगी तो मेरी बख्शिश का सामान हो जाएगा। सैयदा खातून जन्नत रजी अल्लाह ताला अन्हा, रिवायत में आता है कि नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम एक दिन खामोशी से उठे और रवाना हो, किसी को पता नहीं कि कहां गए। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम जब रवाना हुए, सहाबाए किराम रिज़वानुल्लाह ताला अलैहिम अजमईन, उनको पता चला कि सरकार कहीं तशरीफ ले गए, ढूंढने के लिए निकले। और आका को ढूंढना कोई मुश्किल नहीं, क्यों? जिधर से गुजरते थे गलियां मौतर हो जाती, खुशबू ही खुशबू होती, तो खुशबू सूंघते सूंघते आका तक पहुंच गया। देखा कि सजदे में है, या रब्बे हबली उम्मती, या रब्बे हबली उम्मती, या रब, मौला मेरी गुनाहगार उम्मत को बख्श दे, मौला मेरी गुनाहगार उम्मत को माफ कर, रो रहे। सिद्दीक अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आगे बढ़े, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सजदे से सर उठाइए, नहीं उठाया। फारूक आजम, उस्मान गनी, अली के मुर्तदा, एक एक करके आगे बढ़ रहे, आका ने सजदे से सर नहीं उठाया। चलो फिर खातून जन्नत को लेकर आ गए, उनसे अर्ज की, उन्होंने सर से पैर तक चादर ओढ़ी, तशरीफ लाई, बाबा जान सजदे से सर उठाइए, नहीं उठाया। या रब्बे हमली उम्मती, रो रही, या अल्लाह मेरी उम्मत को बख्श, अगर आप सजदे से सर नहीं उठाएंगे तो फातिमा सजदे में सर रखेगी और अर्श के पाए को हिला देगी। फातिमा ने जितनी इबादत की, जितनी चक्की पीसी, जो कुछ किया, सब आपकी उम्मत पे कुर्बान। दुआ के लिए हाथ उठाए, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सजदे से सर उठा लिया अपनी प्यारी शहजादी की वजह से। शायर ने लिखा, वो नूरुल ऐन वो लखते दिले में है बूबे रबानी, वो फखरे हाजराओ आसिया वो मरियम सानी, वो जिनका एक सजदा जामिने आफू खता कारा, वो जिनकी जुम्बिश लब शाफ़े जुर्मो गुनाहगारा। वो जिनकी जुम्बिश लब शाफ़े जुर्मो गुनाहगारा, वो शब्बेदार वो सिर्फ रुकुओ सजदाओ पे हम, वो शब्बेदार वो सिर्फ रुकुओ सजदाओ पे हम, वो जिनकी जात पे नाजा हुजूरे रहमते आलम, वो जिनकी जात पे नाजा हुजूरे रहमते आलम। हजरते सैयदा तैयबा ताहिरा आबिदा खातून जन्नत फातिमातु ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, आपकी शर्म व हया मशहूर। हजरत अली शेर खुदा रज़ी अल्लाह ताला उस हदीस को रिवायत करते हैं, फरमाते हैं कि आप निहायत शर्म व हया वाली थी और अल्लाह ताला कयामत के दिन भी खातून जन्नत की शर्म व हया का लिहाज रखेगा। हजरत अली रिवायत कर, सरकार ने फरमाया कयामत के दिन भी अल्लाह तबारक बताना इनकी शर्म व हया का लिहाज रखेगा। किस तरह? फरमाते जब पुलसरात से सब गुजर रहे होंगे, पुलसरात जानते हो ना, तलवार से ज्यादा तेज, बाल से ज्यादा बारीक, उसमें से गुजरना। कैसे गुजरेंगे? अहले महशर सब उसमें से गुजरेंगे। हजरत अली फरमाते हैं कयामत के दिन जब अहले महशर पुल से रात से गुजर रहे होंगे और खातून जन्नत रजी अल्लाह ताला अन्हा की बारी आएगी, अल्लाह की तरफ से एक मनादी निदा करेगा, अहले महशर अपनी आंखों को झुका लो, रसूलुल्लाह की साहबजादी गुजर रही। अपनी आंखों को झुका लो, शहनशाह कौन मकां की शहजादी गुजर रही है। कहते हैं सब अपनी आंखों को झुका लेंगे और खातून जन्नत तेजी के साथ गुजर जाए। उम्मुल मोमिनीन हजरत आयशा सिद्दीका रजी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं कि एक मर्तबा नबी पाक अलैहि सलातो वसलाम ने खातून जन्नत को बुलाया, अपने करीब बुलाया और उनके कान में कुछ सरगोशी की, यानी कोई और नहीं सुन सका, उम्मुल मोमिनीन देख रही। तो जब सरकार ने सर गोशी की ना, कुछ कहा, तो खातून जन्नत रजी अल्लाह ताला अन्हा रोने लगे, उनकी आंखों से आंसू जाए। सरकार ने देखा मेरी बेटी रो रही है, दोबारा करीब बुलाया, फिर उनके कान में कुछ कहा तो मुस्कुराने लगे। उसके बाद जब ये उठकर आई तो उम्मुल मोमिनीन सैयदा आयशा सिद्दीका रजी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं कि मैंने पूछा कि फातिमा वो क्या बात थी, हमें भी बताओ। कहा वो तो एक राज है, राज की बात है। खामोश हो गई, दोबारा नहीं पूछा, भाई राज तो बताया नहीं जाता। कहती जब सरकार दो आलम अलैहि सलातो वसलाम का विसाल हो गया तब मुझे याद आया, मैंने फिर पूछा फातिमा वो बात कौन सी, कहा वो उस दिन जो हुई थी। जब सरकार ने तुम्हें करीब बुलाया था तुम रोने लगी, फिर दोबारा बुलाया, फिर कान में कुछ कहा, फिर तुम हंसने लगी, अब तो मुझे बता दो। उन्होंने कहा हाँ, पहली मर्तबा बाबा जान ने मुझे अपने इंतकाल की खबर दी। फातिमा अन करीब मैं तुमसे जुदा होने वाला। तो जाहिर है ये सुनकर मैं रोने लगी, मेरी आंखों से आंसू जारी हो गए। और उसके बाद फिर मुझे करीब बुलाया, कहा फातिमा मेरे अहले बैत में सबसे पहले तुम मुझसे मिलोगे, मेरे अहले बैत में सबसे पहले तुम मुझसे मिलोगे। तो मैं खुश हो गई, मैं हंसने। अब देखो सरकार दो आलम अलैहिस्सलाम ने पहले ही बता दिया तुम मुझसे मिलोगी, इसका मकसद क्या था कि अहले बैत में सबसे पहले तुम्हारा इंतकाल होगा। और हुजूर अलैहिस्सलाम के विसाल मुबारक के 6 महीने बाद सैयदा का विसाल हुआ। 6 महीने के बाद निहायत शर्म व हया वाले आज की खवातीन के लिए सैयदा फातिमतु ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की सीरत नमूना है। उनकी अतवार, उनकी आदात, उनके तौर तरीके इस्तेमाल करें, उनकी सुन्नत पर अमल करें तो कभी भी ना कोई लड़ाई झगड़ा हो, ना कोई मसला हो, ना कोई परेशानी। लेकिन आज की औरत को मगरिब ने इस्लाम से दूर कर दिया। और कितने शर्म की बात है कि वो मुल्क जो इस्लाम के नाम पर हासिल किया गया, उस मुल्क में अभी 1-2 साल से एक नारा लग रहा है, मेरा जिस्म मेरी मर्जी। ये नारा लग रहा है, लग रहा है, नहीं लग रहा? ये पिछले साल से या शायद उससे पिछले साल से शुरू हुआ। चंद बेगैरत औरतें इस्लामाबाद की सड़कों पर निकलती हैं, न उन्हें गैरत है न शर्म है, और रोड पर आकर जुलूस निकाल लेंगे, हमारे हुकूक, हमारे हुकूक। अरे तुम्हारे हुकूक तो आकायदे जहां ने पहले ही दे दिए। ये जमाना जाहिलियत नहीं है। जब औरत को पैर की जूती समझा जाता था, आका ने फरमाया नहीं, औरत मां है, उसके पैर के नीचे जन्नत। औरत बीवी है, उससे मोहब्बत करना जरूरी है। औरत बेटी है, उस पर शफकत करना लाजिम है। औरत बहन है, उसकी इज्जत और एहतराम और उसकी इज्जत की हिफाजत तुम पर लाजिम है। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने तो यह बताया। इन बेशरम औरतों को कौन बताए कि असल इज्जत तो इस्लाम पर चलने में है। नहीं, उनको एक नारा सिखा दिया, मेरा जिस्म मेरी मर्जी। जरा सा गौर करो, इनसे पूछो क्या अपनी मर्जी से पैदा हुए। एक सवाल है, क्या आप अपनी मर्जी से पैदा हुए? कोई हुआ अपनी मर्जी से पैदा? नहीं। किसकी मर्जी से? अल्लाह की मर्जी। अच्छा, मरोगे अपनी मर्जी से? मरोगे? मरना तो चाहते ही नहीं। अगर ये मर्जी पर छोड़ दिया जाता मेरे ख्याल से कोई भी नहीं मरता, मरने के लिए तो कोई तैयार नहीं ना। अच्छा, पैदा हुए अपनी मर्जी से? नहीं, अल्लाह की मर्जी। और मरोगे किसकी मर्जी से? अल्लाह की मर्जी से। तो जब जिंदगी की इब्तिदा और इंतहा अल्लाह की मर्जी से है तो दरमियान में अपनी मर्जी क्यों चला रहा? सोचने की बात है ना भाई। जब अल्लाह की मर्जी से पैदा हुए और अल्लाह की मर्जी से मरोगे, तुम्हारी जिंदगी की इब्तिदा अल्लाह की मर्जी से और तुम्हारी जिंदगी की इंतहा अल्लाह की मर्जी से, तो ये दरमियानी वक्फा जो है इसमें अपनी मर्जी क्यों चला रहा? फिर उसी की मर्जी चलाओ जिसकी मर्जी से पैदा हुए और जिसकी मर्जी से जाओ। कहते जी हमारा जिस्म, हम कहते हैं तुम्हारा जिस्म है ही नहीं, ये सब अल्लाह का। ये आंख अल्लाह के लिए है, ये कान अल्लाह के लिए है, ये जबान अल्लाह के लिए है, ये हाथ अल्लाह के लिए है, ये पैर अल्लाह के लिए। जब कोई मरता है हम पढ़ते हैं ना, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, ये पढ़ते हैं ना। और ये ऐसी आयत है जो हर एक को याद है। कोई हादसा हुआ, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि, किसी के इंतकाल की खबर मिली, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि, कोई तकलीफ, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि। ये करते ही नहीं करते, और करना चाहिए। सरकार की सुन्नत भी है, तरीका भी है, करना चाहिए। लेकिन कभी इस आयत पर गौर किया, इन्ना लिल्लाहि, हम अल्लाह के लिए हैं, व इन्ना इलैहि राजिऊन, और हमें उसी की तरफ लौटना है। बात समझ में आई? हम अल्लाह के लिए हैं, क्या मतलब? ये हमारा पूरा जिस्म अल्लाह के लिए, ये आंख अल्लाह के लिए है, ये जबान अल्लाह के लिए है, ये कान अल्लाह के लिए है, ये हाथ अल्लाह के लिए, ये पैर अल्लाह के लिए। क्या मतलब? जब ये आंख अल्लाह के लिए है तो आंख वही देखे जो खुदा चाहता है, कान वही सुने जो खुदा चाहता है, जबान वही बोले जो खुदा चाहता है, हाथ उसी तरफ बढ़े जो खुदा चाहता है, पैर उसी रास्ते की तरफ जाएं जो खुदा चाहता है। बात समझ में आई? नहीं जी, मेरा जिस्म मेरी मर्जी, ला हौल वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलीयिल अजीम। अगर औरतों को अपनी अजमत चाहिए, अपनी अपना वकार चाहिए, खातून जन्नत की सीरत पर अमल कर ले, सबसे बड़ा वकार इज्जत उन्हीं की सीरत पर अमल कर ले। जिस तरह उन्होंने अपनी जिंदगी गुजारी, आज हमारी ख्वातीन उनकी सीरत को अपना ले, यहां भी कामयाब इंशाल्लाह, वहां भी कामयाब, और वहां खातून जन्नत के साथ होंगे इंशाल्लाह ताला। हजरत इब्ने अब्बास रजी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, नजरान के ईसाइयों का एक वक्त आया हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के पास मुनाजरे के लिए, और आकर कहते हैं, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हम आपसे एक सवाल करना चाहते हैं, एक मुनाजरा करना चाहते हैं। फरमाया, करो। कहा, ये बताइए कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के मुतालिक आपकी क्या राय, आपका अकीदा क्या है? सरकार ने फरमाया, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम अल्लाह के जलीलुल कद्र पैगंबर हैं, और हजरत मरियम सलामुल्लाह अलैहा के बेटे। उन्होंने इजाफा किया, और अल्लाह के बेटे ईसाइयों। सरकार ने फरमाया, क्यों? कहा, इसलिए कि उनका कोई बाप नहीं है, उनका बाप अल्लाह है। आपने फरमाया, अच्छा, इस वजह से तुम उनको कह रहे हो अल्लाह का बेटा, क्या उनका कोई बाप नहीं? कहा, तो फिर इनसे पहले हजरत आदम को अल्लाह का बेटा कहो, इनकी तो मां है हजरत आदम की, ना मां है ना बाप। बात सही थी ना? दलील कितनी मुस्तहकम थी। अगर तुम इस वजह से हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह का बेटा कह रहे हो कि उनका बाप नहीं है, तो हजरत आदम को भी अल्लाह का बेटा कहो। हजरत ईसा की तो मां मौजूद है, उनकी तो ना मां है ना बाप, फिर वो भी अल्लाह के बेटे हुए। इन्होंने कहा, नहीं जी नहीं, ऐसी बात नहीं है। हुजूर अलैहिस्सलाम की जो दलील थी ना, मजबूत, जवाब नहीं दे सके। अच्छा, जब जवाब नहीं दे सके, कह ठीक है हम जा रहे हैं, अभी फिर हम आएंगे बाद। चले चले, फिर कहते नहीं, अब हम मुबाहला करेंगे। मुबाहला, एक होता है मुनाजरा, एक होता है मुबाहला। मुनाजरा ये होता है ना, दो फरीक बैठे, दलील दे, इसने दलील दी, उसने तोड़ दी, उसने दलील दी, उसने तोड़ दी। मुबाहले में कोई मुबाहिसा नहीं होता, दोनों आमने सामने बैठते हैं, अल्लाह से दुआ करते हैं, मौला हमारा अकीदा ये है, दोनों अकीदा बयान करते हैं, और कहते हैं कि जो सच्चा हो जिंदा रहे, झूठा हो मर जाए, या ये कहते हैं जो सच्चा हो उसको इज्जत दे, झूठा हो उसे दलील कर, कुछ भी दुआ करते हैं। अल्लाह ताला पर फैसला होता है, और अल्लाह फैसला फरमाते। तो ये चले गए, और इन्होंने कहा कि हम नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम के पास फिर आएंगे बाद। सरकार ने फरमाया, ठीक। तफसीर कबीर में इसकी तफसील मौजूद है, और दीगर कुतुब में भी मौजूद। हजरत इब्न अब्बास फरमाते हैं कि ये आए, मैदान मुबाहला मुकर्रर हो गया, ये आए चमकते हुए लिबास पहनकर, फड़कते हुए, उनका कलर ऐसा था और रंग ऐसा था, चमकीले थे कि आंखें खीरा हो रही। वो सारे पादरी आए सामने बैठ गए, और इधर नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम इस शान से गए कि आपकी गोद में इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु, उंगली पकड़े हुए इमाम हसन रज़ियल्लाहु अन्हु, आपके पीछे मौलाए कायनात हजरत अली शेर खुदा रज़ियल्लाहु अन्हु, और उनके पीछे खातून जन्नत रज़ियल्लाहु ताला अन्हा। सरकार इनको ले गए मैदान मुबाहला में, और दुआ की, अल्लाहुम्मा हाउलाई अहलु बैत, या अल्लाह ये मेरे अहले बैत। और अहले बैत से फरमाया, सुनो, जब मैं इनके लिए दुआएं जरर करूं तो मेरी दुआ पर तुम सब आमीन कह देना। इन्होंने कहा, ठीक। वो लोग आए थे कीमती लिबास पहनकर, चमकते हुए कपड़े पहनकर, कि हमारे लिबास का रौब इन पर पड़ेगा। रावी कहता है वो चमकते हुए लिबास पहनकर आए जिससे आंखें खीरा हो रही थी, लेकिन देखने वाले देखते थे कि इधर उनके लिबास चमकते थे तो उधर अहले बैत के चेहरे चमकते थे। इधर लिबास चमकते थे उधर चेहरे चमकते थे। और अल्लाह तबारक व तआला ने इसका जिक्र किया कुरान करीम में। अल्लाह फरमाता है कुल, ऐ महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप फरमा दीजिए, कुल तआलौ नदउ अबनाना व अबनाअकुम व निसाना व निसाअकुम व अनफुसना व अनफुसकुम ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين। ए महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप इनसे फरमा दीजिए, आओ हम बुलाएं अपने बेटों को, तुम भी बुलाओ अपने बेटों को। हम बुलाते हैं अपनी औरतों को, तुम भी बुलाओ अपनी औरतों को। हम भी अपनी जानों के साथ आते हैं, तुम भी अपनी जानों के साथ आ जाओ। ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين। और फिर दुआ करते हैं कि अल्लाह झूठों पर लानत करे, जलील कर दे और सच्चों को इज्जत दे। आ गए। अच्छा अब क्या हुआ? अब देर इतनी रह गई थी कि सरकार दुआ फरमा दे, दुआए जरर उनके लिए। एक था जिसकी भवे भी सफेद, बड़ा बूढ़ा घिसा हुआ बुड्ढा जिसे कहते, उसने देखा अहले बैत के चेहरों को देखा, कहते ला तो बाहेलू बाहलाकू, अरे इनसे मुबाइला ना करना हलाक हो जाएंगे, चलो वापिस चलो। उन्होंने कहा क्या हो गया तुझे? अरे तुझे ही तो बड़ा बना कर लाए थे, तू बात करेगा मुबाहला करेगा, अब तू क्या कहता है? मुबाहला ना करो हलाक हो जाओगे। जानते हो उसने क्या कहा? उसने कहा खुदा की कसम मैं ऐसे चेहरे देख रहा हूं कि ये अगर किसी बात पर कसम उठा लें अल्लाह इनकी कसमों को पूरा कर दे। मैं ऐसे चेहरे देख, अगर खैरियत चाहते हो वापिस चलो। उन्होंने कहा ठीक है जी। उन्होंने कहा है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जी हम मुबाइला नहीं करते जी, हम तो जा रहे हैं, हमें माफ करें। सरकार ने फरमाया जाओ। जब वो चले गए तब मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अगर मैं इनके लिए दुआए जरर कर देता और मेरे अहले बैत उस पर आमीन कहते थे, ये जितने भी थे ये सब बंदर और सूर की शक्ल में मुतशक्किल हो जाते, सब बंदर और सूर की शक्ल में मुतशक्किल हो जाते। अच्छा अब क्या हुआ? जब ये हुआ तो लोगों ने कहा कि देखो हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की एक ही साहबजादी थी, तुम कहते हो नहीं चार थी, चार थी, अगर चार होती तो हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम चारों को लेकर जाते। मुबाहले में एक को लेकर गए ना, सैयदा खातून जन्नत फातिमा तो ज़हरा रदी अल्लाह ताला अन्हा, अगर चार होती तो बाकी तीन कहां थी? एक को लेकर गए, चार होती तो चारों को लेकर जाते। इसका मतलब है एक ही साहबजादी, उनका जोर ही इसी पर है कि एक ही साहबजादी, जबकि चार थी। हमने आपको बताया इब्तिदा। उसका जवाब यह है कि हजरत जैनब, हजरत रुकैया, हजरत उम्मे कुलसूम रदी अल्लाह ताला अनहुन्ना, ये तीनों जो थी ये मुबाइले से पहले पहले विसाल कर चुकी थी। उनमें से कोई एक भी मौजूद नहीं थी, सिर्फ एक साहबजादी खातून जन्नत रदी अल्लाह ताला अन्हा मौजूद थी, सरकार उन्हीं को साथ ले। बात सही है ना? खैर बारह, हजरत खातून जन्नत रदी अल्लाह ताला अन्हा की आदात अतवार नशिस्त बरखात ये सब नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम के बिल्कुल मुशाबा। आपके विसाल का वक्त करीब आया तो आपने फरमाया सुनो, यानी इस वाक़े से आपकी शर्म और हया का पता चलता है कि कितनी हयादार और कितनी शर्म वाली थी। जनाजा रखा हो उस पर चादर डाल दी जाए तो जनाजा तो सीधा होता है ना, बिल्कुल सीधा लिटाया जाता है, तो अगर वैसे ही चादर पड़ी हो तो अंदाजा हो जाता है कि जनाजा औरत का है या मर्द का है, ठीक है ना। تو خاتون جنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ مجھے اس بات سے شرم آتی ہے کہ ایسی صورت میں میرا جنازہ لایا جائے، لہذا میں نے فلا علاقے میں ایک رواج دیکھا ہے کہ جب ان کے یہاں جنازہ جاتا ہے وہ کھجور کی ٹہنیوں کو ایسے گھما کر چارپائی کے دونوں پایوں کے ساتھ باندھ دیتے، اوپر سے نا ایسے ایک چھت گیری سی جیسے ہو جائے، اور اس پر کپڑا ڈال دیتے ہیں تو پھر جنازہ جاتا ہے، میں نے اس چیز کو پسند کیا ہے لہذا میرا جنازہ جائے تو وہ اسی انداز میں۔ آپ نے دیکھا نا آج کل جو جنازے جاتے ہیں، جو مساجد میں جو جنازے کی جو مسحری ہوتی ہے اس کے اوپر ایک جالی سی ہوتی ہے نا، یہ وہی ہے جو خاتون جنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شروع کی تھی اسی وقت سے۔ اب اس کی شکل بدل گئی، اب اس کو کسی نے لکڑی میں کسی نے لوہے میں ایسے بنا دیا کہ مرد کا ہو یا عورت کا، اس کے اوپر وہ ڈال دیتے ہیں، پھر چادر ڈال دیتے ہیں۔ تو یہ طریقہ، اتنی آپ شرم والی تھی۔ تین رمضان المبارک 11 ہجری سیدہ خاتون جنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وصال فرمایا۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے وصال کا آپ کو اتنا صدمہ ہوا کہ بار بار روضہ مبارک پر جاتی تھی، مٹی اٹھا کر اپنی آنکھوں سے لگاتی تھی اور کہتی یہ مٹی کسی کو مل جائے تو یہ مشک اور عنبر سے بھی زیادہ بہتر، اور وہاں بیٹھ کر آنسو بہاتی تھی، پھر واپس تشریف لے آتی، بار بار سرکار کے روضے پر جاتی۔ ایک دن بھی آپ کو قرار نہیں آیا، دلی سکون نہیں ملا، یہاں تک کہ 6 ماہ کے بعد آپ کا وصال ہو گیا۔ حضرت اسماء بنت امیس زوجہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ، ان کی اہلیہ نے آپ کو غسل دیا اور صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کی نماز جنازہ پڑھائی اور مزار مبارک جنت البقیع میں، مزار مبارک جنت البقیع میں۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں اپنی اولاد کو تین چیزیں سکھاؤ، تین: حب نبیکم، حب اہل بیت و تلاوت القرآن۔ کہا یہ تین چیزیں اپنے اولاد کو سکھاؤ، اپنے نبی کی محبت، ان کے اہل بیت کی محبت اور قرآن کی تلاوت۔ یہ تین چیزیں اگر تم نے اولاد کو سکھا دی، یہاں بھی کامیاب اور وہاں بھی کامیاب۔ اللہ تبارک و تعالی بے شمار رحمت نازل فرمائے۔ خاتون جنت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے مرقد مبارک پر ہم نے جو کچھ ان کی خدمت میں ہدیہ پیش کیا، ہدیہ عقیدت اور محبت پیش کیا، آپ سمجھیں کہ یہی ان کے فضائل نہیں ہیں، ہم نے تو اپنی حیثیت کے مطابق ایک حقیر نذرانہ پیش کر دیا، ان کا مقام تو بہت زیادہ بلند۔ ان کی نالین سے لگے ہوئے ذرے اگر ہم پر پڑ جائیں تو ہم سب کے گناہ معاف ہو۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ان سے اتنی محبت کی، آج ان کے بارے میں زبان تان دراز کی جا رہی ہے، کوئی کچھ بول رہا ہے، کوئی کچھ بول رہا ہے، اور اپنی عاقبت خراب کر رہے ہیں۔ سب سے بہتر چیز ہے کف اللسان، ان کے بارے میں، ان نفوس قدسیہ کے بارے میں اپنی زبانوں کو بند کر دو، ایسا نہ ہو کہ تمہارا سارا عمل برباد ہو جائے اور تمہیں پتہ بھی نہ چلے سرکار ان سے کتنی محبت کرتے تھے۔ آپ کسی سے محبت کریں اور کوئی اس کو برا بھلا کہیں تو آپ گوارا کریں گے؟ ارے شہنشاہ کون و مکا کے جگر کا ٹکڑا، فرمایا فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، جس نے اسے اذیت پہنچائی اس نے مجھے اذیت پہنچائی۔ ہم سب پر لازم ہے اہل بیت کا احترام کریں، صحابہ کا احترام کریں، سب سے بڑھ کر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا احترام کریں، اسی میں فلاح ہے، اسی میں نجات ہے، اسی میں کامیابی ہے۔ انشاءاللہ تعالی کل شہزادہ رسول جگر گوشہ بتول سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت، ان کے فضائل اور ان کی شہادت کے متعلق بیان کریں گے۔ وما توفیقی الا باللہ العلی العظیم۔ آپ حضرات اسی عقیدت اور محبت کے ساتھ آتے رہیے، لیکن پھر میں وہی بات کہوں گا کہ لیکن ذرا جلدی آتے رہیے، کیونکہ آپ لوگ آتے ہیں تو ماشاءاللہ بڑی عقیدت کے ساتھ آتے ہیں لیکن آدھا ٹائم گزار کر آتے ہیں، تو جلدی آ جائیں گے تو پھر تقریر جلدی شروع ہو جائے گی، ہم زیادہ بیان کر دیں گے۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔